शांति। सभी कहेंगे ओम शांति। बहनों के तरफ ओम शांति। जिस स्थान पर आप आए हो ये कोई साधारण स्थान नहीं है, परंतु ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है और हम इस निश्चय से कहते हैं कि इस विश्वविद्यालय में हम सबका शिक्षक वो निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें यह ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सिखाया है। और पिछले 75 वर्षों से यह ईश्वरीय सेवा परमात्मा बहनों माताओं के द्वारा करवा रहे हैं, इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य करवा रहे हैं। तो मैं आपको वो 75 वर्षों का इतिहास कोशिश करूंगी 60 मिनटों में देने का, जो चित्रों के माध्यम से आप बहुत सुंदर रूप से देख सकेंगे और अधिक लाभ ले सकेंगे। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय शिव परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा रचा। अगर इसे यज्ञ कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यज्ञ कब रचा जाता है? जब कोई आपत आती है तो उस आपत के समय पर यज्ञ रच करके शांति की प्रार्थना की जाती है, कुछ परिवर्तन के लिए ईश्वर का ध्यान किया जाता है, कुछ त्याग किया जाता है, स्वाहा किया जाता है, जिससे वातावरण में एक परिवर्तन आता है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने रचा है, जिस यज्ञ के द्वारा विश्व परिवर्तन का यह महान कार्य हो रहा है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा कौन थे और कैसे ये कार्य आरंभ हुआ, वो एक बहुत लंबी कहानी है। 75 वर्षों का एक बहुत बड़ा सफर है। कई लोग समझते हैं कि ये संस्था क्या कार्य कर रही होगी, क्योंकि ये विश्वव्यापी संस्था जिसकी 130 देशों से भी अधिक देशों में ब्रांचेज हैं, जिसमें हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित हैं और आप जैसे लाखों भाई बहनें नियमित विद्यार्थी के रूप में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विद्यार्थी बनकर आते हैं और यहाँ की शिक्षाएं प्राप्त कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, कमल फूल समान बनाते हैं। तो ये इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? पिताश्री ब्रह्मा बाबा, ये नाम उनको परमात्मा ने दिया, लेकिन उनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे। आपकी ही तरह वो व्यापारी थे और जितने भी व्यापार होते हैं, वैसे भी कहा जाता है उत्तम व्यापार है, पर जितने भी व्यापार हैं उन सब में से भी उत्तम व्यापार हीरे जवाहरातों का व्यापार माना जाता है। तो साधारण परिवार में जन्मे, सिंध हैदराबाद के एक गांव में जन्मे, जिनके पिता एक स्कूल के प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बहुत साधारण, ऐसे घर में पैदा हुए और अपने जीवन काल में इतना कुछ किया जो एक सफल हीरे जवाहरातों के व्यापारी बन गए। 1876 में इनका जन्म हुआ था और लगभग 60 वर्ष की उम्र हो चली थी 1936 में, जब से इनके जीवन में परिवर्तन आया। परंतु सफल व्यापारी के साथ साथ बाबा बहुत ही नामी ग्रामी थे हैदराबाद सिंध में, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था। उस समय अंग्रेजों का राज्य था, राजाएं महाराजाएं भी राज्य करते थे, अलग अलग रियासतें थी भारत के अंदर। तो बाबा जितने ही धनी थे, क्योंकि राजाओं महाराजाओं के साथ व्यापार था, उनकी जो रानियां थी वो तो नहीं आएंगी इनके पास, बाबा उनके पास जाते थे और वे गहने पसंद करती थी हीरे जवाहरातों के। बाबा का दुकान कलकत्ता में था लेकिन घर इनका हैदराबाद सिंध में था, तब तो अविभाजित भारत था। तो हैदराबाद सिंध में रहते थे और कलकत्ता आते जाते थे, उनके पार्टनर वहां रहते थे। तो जितने ही राजाओं महाराजाएं के साथ उनका संबंध था, उतना ही अंग्रेजों के साथ भी संबंध था, क्योंकि वो भी बाबा की दुकान में हीरे जवाहरात खरीदने आते थे। यहाँ तक कि क्वीन एलिजाबेथ तब छोटी थी, वो भी आई थी, क्वीन विक्टोरिया अपनी माँ के साथ वो भी आई थी और वहां से हीरे खरीदे थे। तो बाबा बताते थे कि कैसे अंग्रेज आते थे और बहुत अच्छा व्यापार था। तो जितने ही बहुत बड़े व्यापारी थे उतने ही धनी थे, पर उतने ही दानी भी थे। कोई ऐसा व्यक्ति उनके द्वार पर आता तो बाबा कभी उनको हाथ खाली नहीं भेजते थे। हाथ खाली क्या कहा जाता है, क्योंकि घर में आया एक अतिथि आया, अतिथि देवो भव कहते हैं, तो उस हिसाब से तो बाबा उनका सत्कार करते थे, लेकिन जो उनकी इच्छा होती थी वो भी पूरी करते थे। गरीब लड़कियों की शादी के लिए माँ बाप आते थे तो भी बाबा उनके लिए दहेज के लिए धन देते थे, इतना बड़ा दिल था बाबा का। तो कैसे पिताश्री जी जो दादा लेखराज के रूप में थे और कहाँ से प्रजापिता ब्रह्मा कहलाए, ये लंबा इतिहास आपको बताना चाहेंगे। बाबा के जीवन में खोज थी सत्य को जानने की, ये संसार क्या है, भगवान कौन है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं इस संसार में, ये दुनिया भगवान ने क्यों रची, आखिर इसका लक्ष्य क्या है, इतना दुख क्यों है संसार में, इतनी बुराइयां क्यों है अगर ये ईश्वर की रचना है तो। तो इस प्रकार के कई प्रश्न उनके मन में उठते थे और अक्सर वे अपने गुरुओं से पूछते थे। बाबा ने अपने जीवन काल में 12 गुरु किए, वैसे तो एक ही गुरु कोई करता है उसी में वो संतुष्ट हो जाता है, कहेगा ये मेरा गुरु है, तो कुछ और किसी का सुनने को तैयार नहीं होते हैं, भाई नहीं मैंने गुरु किया हुआ है। लेकिन बाबा के अंदर में जो सत्य जानने की उत्कंठा थी, इसलिए बाबा अनेकों से मिलते थे और बाबा ने गुरु भी बदले किए, ताकि कौन उनको ऐसा सच्चा गुरु मिल जाए जो उनको सत्य की पहचान कराए। बाबा को गीता कंठस्थ थी, गीता इतने हद तक कंठस्थ थी कि स्वयं गीता का पाठ करते थे और घर वालों को बिठा करके रोज सुबह गीता का पाठ करते थे बिना नागा। एक दिन भी बाबा ने गीता के पाठ बिना छोड़ा नहीं। यहां तक कि अगर वो ट्रेन में होंगे तो भी बाबा गीता का पाठ करते थे और गीता का पाठ करके फिर कुछ मुंह जूठा करते थे, स्नान पानी करके पहले गीता का पाठ करेंगे फिर और कुछ काम। तो इतनी उनकी अटूट भक्ति थी और विष्णु के पक्के भक्त थे। कट्टर वल्लभाचारी श्रीनाथ उनके इष्ट थे और विष्णु का ही ध्यान करते थे, विष्णु का ही चित्र अपने पॉकेट में रखते थे। हर वक्त वही इनके इष्ट उनके सामने होते थे, जहां भी वो जाते थे वहां विष्णु का ही बड़ा चित्र सामने लगवाते थे ताकि मैं इनका हर समय ध्यान कर सकूं। तो कैसे अनायास उनके जीवन में एक परिवर्तन आया, वो जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी है जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। क्योंकि बाबा सफल व्यापारी, धनी, दानी, भक्त, ऐसा कोई मंदिर नहीं था जहां बाबा दर्शन करने न गए हो। यहां तक कि अमरनाथ की भी यात्रा की थी बाबा ने। परिवार बड़ा सुखी, पांच बच्चे थे, तीन बेटियां, दो बेटे, लगभग उनकी शादी भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक एक दिन की बात है कि बाबा अपने इष्ट के ध्यान में बैठे थे, विष्णु के ध्यान में, और विष्णु चतुर्भुज उनके सामने आके प्रत्यक्ष हो गए। बहुत भव्य साक्षात्कार विष्णु चतुर्भुज का पिताश्री जी ने किया। इतना सुंदर साक्षात्कार था और विष्णु जी उनके सामने आके प्रत्यक्ष हुए और उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, जैसे मैं विष्णु चतुर्भुज हूं वैसे तुम भी मेरे समान हो। विष्णु के कई रूप हैं, कई मंदिर हैं, श्रीनाथ, द्वारकानाथ, जगन्नाथ, बालाजी, ये सब विष्णु के ही अलग अलग तीर्थ हैं। तो एक एक करके बाबा के सामने आते गए विष्णु के अलग अलग रूप, चार भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हुए और एक एक ने एक ही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम, अहम चतुर्भुज तत्त्वम। और देखते देखते बाबा ने देखा कई विष्णु के स्वरूप उनके सामने आए और ये वरदान उनको मिला। तो बहुत समय के बाद जब ध्यान से नीचे उतरे तो बाबा को बहुत अच्छा तो लगा, उनको लगा कि मेरी भक्ति का मुझे फल मिल गया है, मुझे मेरे भगवान के दर्शन हो गए हैं, क्योंकि विष्णु की भक्ति करते थे। तो ये तो परमात्मा की बहुत सुंदर युक्ति थी कि परमात्मा ने उनको अपने भविष्य का साक्षात्कार कराया कि तुम ही ये बनने वाले हो। इसलिए विष्णु ने उनको वही वरदान दिया कि अहम चतुर्भुज तत्त्वम, तुम ही मेरे जैसे हो। लेकिन उस समय ये ज्ञान बाबा को नहीं था, भक्ति जरूर विष्णु की करते थे लेकिन परमात्मा कौन है ये पता नहीं था। वही विष्णु को ही अपना ईश्वर मानते थे। तो जैसे ये उनको साक्षात्कार हुआ तो इसके बाद अपने गुरु से पूछा कि ये जो मुझे साक्षात्कार हुआ इसका अर्थ क्या है, मैं कैसे विष्णु जैसा हूँ, विष्णु तो मेरे भगवान है, मेरे इष्ट है, मैं तो उनका भक्त हूँ, मैं तो उनका दास हूँ, मैं तो उनका सेवक हूँ, क्योंकि हम यही मानते हैं कि हम तो उनके दास हैं, सेवक हैं, भक्त हैं, वो तो ऊंचे से ऊंचा है, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, तो मैं इन जैसा कैसे हूँ। तो गुरु को भी इतना तो समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब होगा, पर इतना जरूर कहा कि जरूर भगवान को आपसे कुछ कराना है क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है और भगवान आपसे कुछ कराना चाहते हैं। इसीलिए भगवान ने आपको अपना कार्य सौंपने के लिए शक्ति दी है, अपना साक्षात्कार कराया, ये कुछ बातें उनको कही। तो बाबा को लगा कि भगवान को मुझसे कोई काम कराना है, क्या कराना है? हे भगवान, ये भी तो मुझे बताओ कि मुझे आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, अब और आदेश दो, मैं जो आप कहेंगे मैं तैयार हूं करने के लिए। तो उसके बाद बाबा के अंदर में एक वैराग्य आ गया, बहुत वैराग्य, और इतना वैराग्य आ गया कि बस सोचा है, बस अभी मैं इस धंधे को मुझे छोड़ देना है। तो गुरु ने उनको कहा कि आप थोड़ा समय के लिए एकांतवास करिए, और उस एकांतवास में आपको भगवान की कुछ और प्रेरणाएं मिलेगी, क्योंकि आपको ईश्वर का कोई बड़ा कार्य करना है। तो ये तो जरूर उनको गुरु से प्रेरणा मिली। तो एकांतवास करने के लिए बाबा बनारस चले गए, हैदराबाद सिंध से। उनको कलकत्ता जाना था अपनी दुकान में, जहाँ उनके पार्टनर रहते थे, वही दुकान संभालते थे। तो उनसे पहले सोचा मैं थोड़ा समय बनारस में कुछ तपस्या करूं, उनके वहां मित्र रहते थे बनारस में। तो कुछ एकांतवास लेने के लिए बाबा बनारस चले गए कि गंगा के घाट पर बैठकर कुछ तपस्या करूंगा। अब जैसे ही बाबा बनारस पहुंचे, तो बनारस में एक दिन की बात है, शाम के समय बाबा अपने इष्ट के ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनको कुछ भयंकर दृश्य दिखाई दिए। उन्होंने साक्षात्कार में विनाश के दृश्य देखे, तीन रूप से इस सृष्टि का विनाश होता हुआ देखा, जिसमें पहला दृश्य देखा कि हवाई जहाज आकाश में मंडरा रहे हैं, और उनमें से उस हवाई जहाज से कोई मिसाइल जैसी चीज नीचे गिरी, और जहां वो चीज गिरी वहां आग फैल गई। इतनी आग फैल गई जो देखते ही देखते बाबा ने देखा सब कुछ राख बन गया, भस्म हो गया उस आग में। तो बाबा को तो समझ में नहीं आया ये क्या मैं देख रहा हूं, क्या ऐसे दुनिया सब राख बन जाएगी। लेकिन जैसे वो दृश्य अभी पूरा ही नहीं हुआ था, वो दूसरा दृश्य बाबा के सामने आया, जिसमें बाबा ने देखा ग्रह युद्ध, चारों ओर ग्रह युद्ध है, लोग एक दो को गोली मार रहे चला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और देखे देखते देखते बाबा ने देखा लोग गिरते जा रहे हैं, खून की नदियां बह रही है, और लाशें ही लाशें पड़ी है चारों तरफ, बिल्कुल जैसे शमशान जैसा हो गया, चारों ओर लाशें पड़ी है और खून की नदियां बह रही है। उसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य देखा, जिसमें पांचों ही तत्व, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये पांचों ही तत्व इतना विनाश ला रहे हैं, जो सब कुछ धीरे धीरे बाबा ने देखा सब कुछ जलमग्न हो गया, जैसे प्रलय हो गए। ये बाबा ने देखा दृश्य, बड़ा भयंकर दृश्य था, भयावह डरावना। तो बाबा को तो सहन ही नहीं हुआ, इतने तक कि जैसे बाबा रो पड़े कि मैं क्या देख रहा हूं भगवान, ऐसी दुनिया इस प्रकार खत्म हो जाएगी, फिर इतनी सुंदर दुनिया आपने बनाई क्यों, इसके मन में प्रश्न तो थे ही। लेकिन कहां से उनको उत्तर मिले, परंतु उनसे वैराग्य और भी ज्यादा आ गया। बस फिर उसके बाद कुछ समय के बाद बाबा को एक और साक्षात्कार हुआ बनारस में, जिसमें बाबा ने परम धाम का दृश्य देखा, अखंड ज्योति का एक महतत्व देखा, और उस महतत्व में छोटे छोटे सितारे, ये आत्माएं थी, परंतु बाबा को तो समझ में नहीं आया ये क्या देख रहा हूं। और उस सुनहरे लाल प्रकाश के महतत्व में एक उल्टे वृक्ष की तरह सितारों का झाड़ देखा, जिसमें बीज ऊपर था और वो वृक्ष की ब्रांचेस जैसे नीचे थी, और वो सितारे चमक रहे थे, सितारों का झाड़ बाबा ने देखा। ये वास्तव में परम धाम का साक्षात्कार किया बाबा ने, बहुत ही शांति का अनुभव किया, जैसे उस धाम में वो भी एक सितारे की तरह विराजमान है, ऐसे अनुभव किया। और फिर बाबा ने उसमें देखा कि वो जो सितारे थे, धीरे धीरे एक एक करके वो सितारे उस झाड़ से उतर करके निकल करके नीचे आने लगे और बाबा बिल्कुल साक्षी होकर के देख रहा है कि कैसे वो सितारे चमकते हुए नीचे आ रहे हैं। और नीचे जैसे दृश्य देखता गया, आंखें नीचे जाती रही तो देखा कि वो सितारे धीरे धीरे धरती पर पहुंचे। और जैसे धरती पर पहुंचे तो धरती पर पहुंचते ही एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। बाबा को अचरज हुआ कि ये मैं क्या देख रहा हूं, इतना सुंदर संसार बाबा ने देखा, जो पांचों तत्वों ने इतना कहर मचा करके पूरा सर्वनाश कर दिया था, अब वो पांचों ही तत्व आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी एक सुंदर स्वरूप बनकर के उनके सामने आए, जो नदी के रूप में, पहाड़ों के रूप में, बाग बगीचों के रूप में, सुंदर हरियाली के रूप में, और देवी देवताएं चारों ओर विचरण कर रहे हैं, रास लीलाएं चल रही है, और बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। और उसके साथ साथ देखा कि लक्ष्मी नारायण, श्री लक्ष्मी श्री नारायण अपने महल से निकल करके बाग में टहल रहे हैं, और बहुत एक सुंदर दृश्य चारों ओर का देख करके बाबा अचरज खाने लगे कि ये कैसी दुनिया है। और उसी समय बाबा को एक आवाज आई, आवाज क्या थी, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है जिसके लिए तुमको निमित्त बनना है। ऐसी सुंदर सतयुगी दुनिया तुमको लानी है, इसलिए उठो जागो। बस ये उठो जागो ये कान में गूंजने लगे ये आवाज, अब उठो जागो। बाबा देखते ही रह गए, ये ऐसी दुनिया मुझे बनानी है, हे प्रभु ये भी तो बताओ कि मैं कैसे बनाऊं ऐसी दुनिया, उसके लिए मुझे क्या करना होगा। अब वो और उनके मन में प्रश्न उठने लगे, अब वो जवाब कौन दे। लेकिन इसके बाद बाबा के अंदर में जो वैराग्य उत्पन्न हुआ इस संसार के लिए वो तो अद्वितीय था। अब बाबा ने सोचा मैं यहाँ बनारस में बैठा कैसे रहूंगा, आखिर तो मुझे जाना पड़ेगा। और उनके पार्टनर बुला रहे थे बाबा को कलकत्ता में, जरूर धंधा तो बहुत फैला हुआ था, राजाएं महाराजाएं अभी उनको बुला रहे थे। तो बाबा ने सोचा मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा जो भगवान का मुझे आदेश मिला है। तो उसके लिए बाबा बनारस से कलकत्ता गए, और कलकत्ता में बाबा ने सारी बात अपने पार्टनर को बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान ने कुछ बड़ा कार्य दिया है। तो बाबा जब हीरों को देखते थे तो हीरे तो बाबा को जैसे पत्थर दिखाई देने लगे, हीरे नहीं लगने लगे, आंखों की दृष्टि जैसे बदल गई, और इस कलयुगी दुनिया के लिए बिल्कुल जैसे इतना वैराग आ गया, बस अभी ये संसार छोड़ दूं, लेकिन क्या करना है, ईश्वर का मुझे बड़ा कार्य मिला है, कैसे मैं करूंगा ये तो मैं नहीं जानता। तो अपने पार्टनर को कहा कि कम से कम ये जो धंधा है अब मेरे से नहीं होगा, मुझे ये धंधा वाइंड अप करना है, और आप ये धंधा भले करो, ये दुकान आप ले लो, और जितना मेरा प्रॉफिट है, जो मेरा हिस्सा है, वो मैं लेकर वापस अपने हैदराबाद सिंध जाऊंगा अपने परिवार के पास। क्योंकि परिवार वालों से भी संदेश आ रहा था, टेलीग्राम के पीछे टेलीग्राम आ रही थी, पोतरा पैदा हुआ था बाबा को, तो इसलिए पोतरे के पैदा होने के कारण कुछ बड़ा जैसे बाबा उसमें पार्टी भी करते थे, अंग्रेजों को बुलाते थे, अंग्रेज तो सब जगह थे, वही उनका ही राज्य था, और राजाओं को भी बाबा बुलाते थे, लेकिन कभी भी अपनी पार्टी में बाबा ड्रिंक्स नहीं देते थे, अल्कोहल शराब ये कभी नहीं देते थे, क्योंकि पक्के वैष्णव कट्टर वल्लभाचारी थे विष्णु कुल के। तो उस हिसाब से बाबा उनके साथ उठना बैठना था, लेकिन और सब बातों में उनसे बहुत ही न्यारे थे। तो आखिर उनको वापस तो जाना ही था, तो सारा हिसाब किताब पूरा करके बाबा हैदराबाद सिंध चले गए अपना बिजनेस वाइंड अप करके। परिवार वाले हैरान हो गए कि बाबा इतना अपना बिजनेस वाइंड अप करके आ गए हैं। उनको तो समझ में कुछ नहीं आया, उनको तो पता ही नहीं था कि ये सारा क्या बाबा ने अनुभव किया। और जैसे बाबा वापस पहुंचे तो ये विनाश और स्थापना का इतना जो अनुभव बाबा ने किया उससे उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। जो वो इतना ठाट वाट उनका था, कोट पैंट और कैसे लकड़ी लेके चलते थे, बाबा 60 वर्ष की उम्र की हो चुकी थी और जैसे वापस आए हैदराबाद सिंध तो बिल्कुल सिंपल धोती कुर्ता, सफेद धोती कुर्ता पहनने लगे, बिल्कुल जैसे संसार को देखना भी नहीं है, मुंह भी नहीं देखना, मतलब जाना भी नहीं, कहीं किसी से मिलना भी नहीं, इतने हद तक बाबा को वैराग आ गया। और अपने ही घर में बाबा तपस्या करने लगे बस, क्योंकि विष्णु का तो ध्यान करते ही थे और अंदर ही अंदर वो अपने इष्ट को कहते थे कि अब मुझे क्या कार्य करना है वो भी मुझे बताओ। हे भगवान, इस सृष्टि का इस प्रकार विनाश होगा, एक नई सृष्टि आनी है और उसके लिए मुझे आप निमित्त बना रहे हो, तो मुझे उसके लिए करना क्या होगा ये भी तो बताओ। परंतु कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अब क्या हुआ कि जैसे बाबा हैदराबाद सिंध पहुंचे और इतना बड़ा परिवर्तन उनमें आया तो नेचुरली और एकांतवास उनको प्रिय लगने लगी। तो एक दिन बाबा अपने कमरे में बैठे थे, अपने ही घर में कमरे में बैठे थे अपने कमरे में और अचानक संध्या का समय था और बाबा ध्यान मग्न हो गए तो उनको बहुत भव्य ज्योति का साक्षात्कार हुआ। शिव परमात्मा जो ज्योति स्वरूप है उसका साक्षात्कार बाबा को हुआ, जिसमें बाबा ने देखा वो इतना प्रकाशमय तेजोमय स्वरूप, पर जितना ही वो तेज था उतना ही वो बहुत ही शीतल था, बहुत तेज भी और बहुत शीतल भी। और धीरे धीरे बाबा ने देखा वो प्रकाश, वो शीतल प्रकाश कैसे बाबा के नजदीक आया और उनको अनुभव हुआ जैसे वो उनमें प्रवेश हो गए। ये बाबा ने अनुभव किया कि वो नजदीक आए और उनके अंदर समा गए, ऐसे बाबा ने अनुभव।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
जन्म जन्म की प्यास बुझाने पावन बन सरकार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा।
संग में युग में परम पिता शिव कहते हैं,
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
संग में युग में परम पिता शिव कहते हैं,
तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज।
सुख शांति और सावनता से बोले भर लो आज।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है तारा।
ब्रह्मा तन्हा मुक्ति अर्जी
चलना है। चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार।
योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा।
अनुभव हुआ जैसे वो उन्हें प्रवेश हो गए, ये बाबा ने अनुभव किया कि वो नजदीक आए और उनके अंदर समा गए, ऐसे बाबा ने अनुभव किया। और देखते देखते जैसे बाबा को इतनी शक्ति महसूस होने लगी जैसे कि कोई शक्ति उनके अंदर प्रवेश हो गई, ये बाबा ने अनुभव किया। और बिल्कुल आंखें तो बंद थी, तो उनके परिवार वाले पहुंच गए और देखा कोई प्रकाश है, न ट्यूबलाइट कोई बल्ब जल रहा था, न कोई सूर्य का प्रकाश था, तो ये चारों ओर बाबा के प्रकाश कहाँ से आ रहा, उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। और बाबा के चेहरे पर भी इतना प्रकाश, ललाट पर इतना प्रकाश, और देखा बाबा की आंखें बंद है, और आंखें बंद में जैसे उनका मुख चल रहा है, बाबा का मुख चल रहा है, कोई आवाज मुख से निकल रही है, और वो आवाज क्या थी, निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, मैं निज आनंद स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शांति स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ, ये मुख से उनके ही मुख से आवाज निकलने लगे। अर्थात शिव परमात्मा ने उनमें दिव्य प्रवेश किया और उनके मुख से अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूँ। अब बाबा की आंखें बंद और ये बहुत गहरी आवाज उनके मुख से निकल रही थी, तो परिवार वाले हैरान हो गए कि ये क्या दृश्य देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में तो आया नहीं। तो फिर जब आंखें खोली तो बाबा की आंखें भी एकदम लाल लाल जैसे बल्ब चमक रहे थे ऐसे आंखों में। तो बाबा से पूछा, बाबा आपने क्या अनुभव किया? तो बाबा ने कहा कोई प्रकाश था, कोई शक्ति थी, बहुत तेज भी था, लाइट बहुत थी, लेकिन उतनी शीतल भी थी, और वो मेरे करीब आकर मेरे में प्रवेश हो गई। अब वो मेरे से कुछ कराना चाहती है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वो शक्ति है और क्या मुझसे कराना है। बस उसके बाद चमत्कार होने लगे हैदराबाद सिंध में। कैसे चमत्कार होने लगे? पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को, जो बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको जैसे कोई देखता था तो वो बुजुर्ग व्यक्ति गुम हो जाता और उसकी जगह श्री कृष्ण दिखाई देता। बस ये एक चमत्कार हो गया, इतना वंडर लगा लोगों को, जो बाबा को देखे उनको वो बुजुर्ग चेहरा न दिखाई दे लेकिन श्री कृष्ण दिखाई देता था। और श्री कृष्ण देख करके वो समझते थे हमको तो अपने इष्ट के दर्शन हो गए। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज फैल गई कि दादा लेखराज के पास एक चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है या जिन पर उनकी नजर पड़ती है उनको, उनसे श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और इतना ही नहीं, लोगों को घर बैठे जिन्होंने कभी बाबा को देखा नहीं था उनको भी ये साक्षात्कार होने लगे। श्री कृष्ण उनके सामने आता था और जैसे उनके करीब जाते थे तो वो श्री कृष्ण थोड़ा हट करके बाबा सामने खड़े हो जाते थे और श्री कृष्ण पीछे से इशारा कर रहे हैं कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ, इनसे ही, इनके द्वारा ही मैं तुमसे मिलूंगा, इनके पास जाओ। ये कैसे जाए इनके पास, कहीं तो इनको जानते नहीं थे, जो बुजुर्ग लोग थे हैदराबाद सिंध में वो तो जानते थे, बाकी तो नहीं जानते थे। परंतु धीरे धीरे ये न्यूज इतनी फैल गई जो एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई 1936 में, आज से 75 साल पहले की ये बात है। और इतनी बड़ी न्यूज कि अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है, उस मैगजीन में इंटरनेशनल न्यूज आती है, उसमें ये लेख छपा कि हैदराबाद सिंध में भारत में एक दादा लेखराज है, उसके पास ये चमत्कारिक शक्ति है, जो उनको देखता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं उनसे। अब ये तो न्यूज फैल गई। उस समय हैदराबाद सिंध में कुल्फी मिलती थी, कुल्फी एक पैसे की कुल्फी, तो जैसे तो इतने तक वहाँ की न्यूज में आ गया, जैसे पैसे पैसे कुल्फी वैसे पैसे पैसे साक्षात्कार दादा लेखराज के पास, ऐसे हेडिंग बना करके इसे न्यूज छपती थी। तो लोग तो दूर दूर से आने लगे देखने के लिए। पर उसमें भी देखा गया कि कुमारियां माताएं वो ज्यादा आने लगी, परिवार के परिवार भी आने लगे। और उनमें से एक बहन थी जिनका मैं आपको परिचय दूंगी, उसके पहले आपको कुछ और बात सुनाना चाहूंगी कि पिताश्री जी के अंदर में समाज के प्रति बहुत कुछ था कि समाज में जो छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में कुछ राज विद्या तो देते हैं उनको, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स ये विज्ञान पढ़ाएंगे, लेकिन आध्यात्मिकता नहीं पढ़ाई जाती है। तो आध्यात्मिकता की शिक्षा देने के लिए बाबा ने एक स्कूल खोला था हैदराबाद सिंध में, और उस स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे, बोर्डिंग स्कूल था, बाबा ने उनके लिए मकान भी बनवाया था और उस बोर्डिंग स्कूल में रहते थे, उनकी टीचर्स भी उस बोर्डिंग स्कूल में रहती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का ज्ञान और संस्कृत ये सभी कुछ न कुछ जैसे बाबा वो टीचर्स उनको पढ़ाती थी, तो बच्चे उसमें पढ़ते थे। तो बाबा के अंदर में एक इच्छा थी कि ऐसे मेरे पास बहने आए जो पढ़ाए बच्चों को, लेकिन तनख्वाह लेने के लिए नहीं पढ़ाए कि तनख्वाह कर लेनी है, नौकरी करनी है, पढ़ाई पढ़ाने की टीचर बन करके नौकरी करनी और तनख्वाह मिलेगी, उस हिसाब से ना पढ़ाए, लेकिन अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर दे, भगवान को अर्पित करके अपना जीवन बच्चों को पढ़ाए। तो इस हिसाब से जैसे बाबा के सामने कुछ बहनें आई। अब क्या हुआ, एक तरफ वो स्कूल भी चल रहा था, दूसरी तरफ ये बाबा को अनुभव हुए और साक्षात्कार लोगों को हुए, तो बाबा घर में सत्संग करते थे, रोज सुबह गीता का सत्संग करते थे, परिवार वाले आते थे, रिश्तेदार भी आते थे, मोहल्ले वाले आते थे, मित्र संबंधी आते थे, लेकिन दूर दूर से लोग भी आते थे उस सत्संग के अंदर। तो बाबा के समय, उस समय ये छोटे छोटे बच्चे कन्याएं ये बहुत कुछ रहते थे बाबा के साथ साथ, उनके परिवार के साथ साथ बच्चे भी रहते थे, मानो एक इकट्ठा ही एक परिवार था और सबको बाबा जैसे संभालते थे। और फिर धीरे धीरे ये इतना इसका विस्तार होता गया। अब ये आपको मैं बताना चाहूंगी, ये राधे है जिनको हम मम्मा कहते हैं, पिताश्री ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा का भी फोटो आपने देखा होगा, उस समय ये 16 साल की थी 1936 में, और पिताश्री तो 60 साल के थे, लौकिक में उनका कोई संबंध नहीं था, वो दूसरे घर की थी, लेकिन अपने स्कूल में बहुत होशियार थी, नंबर वन आती थी, अवार्ड्स लेती थी, नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला सब में होशियार थी और अवार्ड्स लेती थी, सितार बजाती थी, हारमोनियम बजाती थी, सब कुछ करती थी। अब इनके फादर की डेथ हो गई, क्यों, इनके पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और श्रीलंका में, भारत में और सब जगह इनकी बिजनेस थी, तो अचानक देवाला मारा इनके पिता ने, तो उनकी डेथ हो गई, तो शरीर छोड़ दिया, तो माँ को एकदम सदमा पहुंचा। उनके बेटे की भी डेथ हो गई, तो बेटा भी गुजर गया और पति भी गुजर गया, तो इनके माँ पर तो बहुत कुछ बीती, और ये तीन बहनें थी, भाई तो एक ही था, तो वो भी गुजर गया। तो अब माँ की दशा वो उससे देखी नहीं जाती थी, बेटी जब माँ को देखती थी तो कैसे माँ रो रही है और काले काले कपड़े विधवा के रूप में बाल खुला रख के स्यापा कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मानो रोती रहती थी, रोती रहती थी। और उस समय हैदराबाद सिंध में अगर किसी का पति गुजर जाए, मानो वो विधवा क्या, परंतु वो जैसे कि अपशगुन मानी जाती थी, अगर वो किसी दुकान के भी पास चली जाए ना तो लोग पानी फेंकते थे, भाई ये देखो ना विधवा आई यहाँ, हटाओ हटाओ उसको हटाओ, यानी इतना उसके प्रति तिरस्कार की भावना से लोग देखते थे। और नारी जाति के लिए तो कुछ सम्मान था ही नहीं। सिंध वर की जो सिंधी लोग थे, हैदराबाद सिंध में रहते थे, बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी बिजनेस सारी दुनिया में थी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इंडोनेशिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, सब देशों में वो बिजनेस करते थे, और हैदराबाद सिंध में कभी कभी साल में एक बार आते थे, बाकी तो दुनिया घूमते रहते थे। सिंधी लोग अभी भी बहुत इस प्रकार से हैं। और बेचारी माताएं चार दीवारों में कैद, बच्चों को ही संभालना, बस उन्होंने वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देखते थे। तो जब इनकी माँ की ये दशा देखी बेटी ने, उनका नाम राधे था, तो माँ की दशा उनसे देखी नहीं गई, तो उसी समय उसको किसने कहा कि तुम इनको बाबा के पास ले जाओ और वहां इनको शांति मिलेगी। तो जैसे ही अपनी माँ को बाबा के सामने लेकर के आई, तो इनकी माँ ने बाबा को देखते ही बाबा से श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया और इतना हंसने लगी, जो रोती रोती आई थी वो हंसते हंसते जैसे वो बदल गई, और एकदम श्री कृष्ण को जैसे उसने चिपक लिया, जैसे चटक चिटक जाते ना, वैसे कर लिया, बच्चे के रूप में उसको देखा, जबकि बाबा तो बुजुर्ग थे, और एकदम उसके अंदर में एक ऐसा परिवर्तन आ गया, दृष्टि बदल गई। अब ये भी न्यूज बन गई कि राधे की माँ रोती रोती आई और हंसती हंसती गई, ये न्यूज बनती गई, लोकल न्यूज पेपर्स में तो ये सब कुछ आता था। अब इससे भी बहुत आकर्षण हुआ और लोग आते गए, तो जैसे ये इनको मम्मा कहते हैं क्योंकि आगे चल करके इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपी बाबा ने, तो जैसे ये आई वैसे ही दादी प्रकाशमणि, जिसके बारे में अभी आपको मुन्नी बहन इतना सारा सुना रही थी, बहुत सुंदर रूप से आपको अपना अनुभव सुना रही थी, तो आप दादी प्रकाशमणि अपने युवा अवस्था में आप भी 14-15 साल की उम्र में बाबा के पास आई। आपके पिताजी ज्योतिषी थे और बच्ची की जन्म पत्री जब बनाई थी तो उनको ऐसे लगा कि ये बेटी मेरी बीरा बाई जैसी बनेगी, यानी अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करेगी। तो सुबह सुबह इनको अपने घर में श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बिल्कुल सुंदर बगीचे में श्री कृष्ण को नाचते देखा। तो जैसे उनके नजदीक गई तो श्री कृष्ण गुम हो गया और ब्रह्मा बाबा जैसे खड़े, बाबा को तो इसने देखा नहीं था कभी, इनके पिता तो जानते थे लेकिन इनको नहीं मालूम था, ये तो छोटी थी, 14-15 साल की थी उस समय। तो बस तो उसने कहा कि मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। तो ये श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करती थी, श्री कृष्ण के मंदिर था उनके घर के सामने, उनके पिता ने ही बनवाया था, तो सवेरे जाके कृष्ण को जगाना, शाम को उनको सुलाना, मानो यही करती थी, इनकी ये दिनचर्या थी। तो और गीता इनको कंठस्थ थी, उसने छोटी उम्र में भी गीता का पाठ नित्य करती थी। तो जैसे ही ये साक्षात्कार उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो परंतु उसने किसी को बताया नहीं, सोचा कि बताऊंगी तो लोग हंसी न उड़ावे, इनको क्या पता कि ये साक्षात्कार औरों को भी हुआ है। तो स्कूल जब गई तो इनकी एक फ्रेंड मिली, स्कूल की क्लास फ्रेंड थी, उस तब तक न्यूज तो बहुत फैल गई थी ना, तो उसकी सहेली ने कहा कि देखो यहाँ है ना एक दादा लेखराज है, उनके पास जो जाता है उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, चलो हम लोग भी चले, जैसे न्यूज एक दो को पहुंचाते जाते हैं। इसने कहा मैं अपने पिता से पूछूं, 10वीं कक्षा पढ़ती थी ये, तो अपने पिता से पूछूं, तो जैसे ही पिता के पास शाम को घर लौटी स्कूल से, तो जब तक ये पूछे पिता ने उसको कहा कि बेटी मैंने सुना है यहाँ दादा लेखराज है, उनके पास जो जाते उनको कृष्ण के दर्शन होते हैं, तुम कल जाके देखना, ऐसे नहीं बच्चों को कहते तुम जाके देखना फिर मुझे बताना ये क्या है, न्यूज ऐसे सुन रहे हैं, तुम जाके देख करके फिर मुझे बताना। अब ये तीनों का आपस में कितना संबंध था ये इतना उसको समझ में नहीं आया, लेकिन अगले दिन ये बाबा के पास गई, सत्संग में गई, और जैसे ही सत्संग में गई और बाबा को देखते ही खुद ध्यान में चली गई और देख रही है श्री कृष्ण के साथ 5 साल का छोटा बच्चा और खुद भी 5 साल जैसी उम्र की और कृष्ण के साथ रास कर रही है। अब सत्संग पूरा हो गया, सब पूरा हो गया और ये वहीं ध्यान में बैठी है। तो बाबा इनके पिता को जानते थे, तो जानते थे कि वो ज्योतिषी है और ये कृष्ण की बहुत भक्ति करती है। तो अब बाबा ने किसी को कहा कि जब ये ध्यान से उतरे तो मेरे पास भेजना। तो जैसे ये बाबा के पास गई तो बाबा ने इनको देखकर कहा कि देखो बेटी, मेरा ये जो स्कूल चल रहा है उसमें मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए जो अपना जीवन श्री कृष्ण को अर्पित करें, क्या तुम तैयार हो उसके लिए? तो अगर तुम तैयार हो तो अपने पिता से परमिशन लेकर आओ, चिट्ठी लेकर आओ कि मैं अपने बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। तो ये गई, अपने पिता को सारा अनुभव सुनाया और पिता ने तो कहा कि बेटी तुम्हारा जीवन ही श्री कृष्ण के लिए है। तो सहर्ष उसको पत्र लिख करके दिया कि मैं अपनी बेटी को श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ। बस अगले दिन से फिर स्कूल नहीं गई, बस पूरा हुआ जो स्कूल जो दसवीं कक्षा पढ़ रही थी, बस इतना ही पूरा हुआ। और जैसे बाबा को समर्पित हो गई और वो स्कूल में पढ़ाती रही, ऐसे ही और भी बहनें थी। और इनकी जो मैं बाबा को मिसाल सुना रही थी मम्मा की, इनकी आवाज बहुत सुरीली थी, बहुत मीठी आवाज। तो बाबा उस समय भजन लिखते थे, तो बाबा को आया कि ऐसी कोई भजन गाने वाली चाहिए। तो इनकी आवाज तो थी और ये सुर भी निकालती थी, तर्ज निकालती थी, गाती भी थी। तो बाबा इनको भजन लिखकर देते थे और बाबा कहते थे तुम गाओ, और बाबा ओम की ध्वनि करते थे ओम। तो उसके नाम से जैसे वो जो ग्रुप बैठता था सत्संग में, उनका नाम रख दिया ओम मंडली, ओम की मंडली, क्योंकि ओम की ध्वनि सब करते थे। तो बाबा ने इनको कहा कि तुम ओम की ध्वनि करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, सुरीली है और गहरी है। तो जैसे ये ओम की ध्वनि करती थी तो इनसे श्री राधे के या लक्ष्मी के साक्षात्कार होने लगे, एकदम जैसे साक्षात लक्ष्मी खड़ी है और बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखने लगे। और ये तो छोटी थी बाबा की भेंट में, तो उम्र में तो बहुत छोटी थी, लेकिन दादी प्रकाशमणि जी के अंदर में पढ़ाई की लगन बहुत थी। तो जैसे वो भी समर्पित हो गई और मम्मा राधे अपनी माँ के साथ वो भी समर्पित हो गई, क्योंकि इनकी दो तीन बहनें थी वो भी समर्पित हो गई। तो मानो देखते देखते कई परिवार के परिवार भी जैसे बाबा के पास समर्पित हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ये कार्य आगे बढ़ा, सत्संग आगे बढ़ता गया, तो शिव परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक प्रतिज्ञा करवाई सबसे उसमें, क्योंकि कन्याएं माताएं बहनें वो ज्यादा थी, पुरुष भी थे लेकिन ये कन्याएं माताएं ज्यादा थी। तो शिव परमात्मा ने पिताश्री जी के द्वारा एक प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो सब ने जो भी उसमें उसमें सत्संग में थे, सब ने प्रतिज्ञा की, यहाँ तक कि जो बच्चे थे छोटे छोटे जो स्कूल में पढ़ते थे, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। अब ये भगवान की शक्ति थी, ये कोई इंसान की शक्ति नहीं थी। इंसान की शक्ति ये काम कर भी नहीं सकती है, ये ईश्वर का कार्य था। बाबा खुद हैरान होते थे कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये कौन सी शक्ति मेरे द्वारा करवा रही है। बस उसके बाद क्या हुआ, हैदराबाद सिंध में एक हंगामा हो गया। जो बुजुर्ग लोग थे उनको तो बहुत आश्चर्य हुआ, ये दादा लेखराज ने ये क्या काम कर दिया, छोटे छोटे बच्चे कन्याएं कुमारियां माताएं उन्होंने ये प्रतिज्ञा कैसे करवा ली कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। तो उन्होंने बाबा का विरोध किया, तो एंटी ओम मंडली बन के तैयार हो गए और उन्होंने पिकेटिंग की। एक दिन जो बाबा का मकान था उसके आगे आके धरना दिया, और बच्चे तो गए थे वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। अब ये सारे जो बुजुर्ग लोग थे हैदराबाद सिंध के, उन्होंने ये जैसे पिकेटिंग कर ली और बच्चों को अंदर जाने नहीं दिया। अब बच्चे कहे हम भी यहाँ खड़े, आप भी खड़े रहो, देखते हैं कौन थकता है पहले। अब बच्चे तो थकेंगे नहीं, पर बुजुर्ग कहाँ तक खड़े रहेंगे, तो वो तो थक गए। तो उन्होंने फिर क्या किया, पिकेटिंग तो छोड़ दी, लेकिन उन्होंने केस किया, बाबा पर केस किया कि ये कन्याओं माताओं को और बच्चों को ऐसे प्रतिज्ञा कैसे करवा ली। और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति है ही नहीं, मुझे भी ये भगवान का आदेश मिला कि अपने जीवन को पवित्र योगी बनाओ, तो मैंने भी बनाया। मैं भी अपने परिवार में ही रहता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, उन्होंने भी ये प्रतिज्ञा की, क्योंकि सपने उनके बच्चों ने भी की, सपने की। अब केस तो किया, लेकिन बाबा तो कैसे, मम्मा वो केस लड़ने के लिए कोर्ट में गई, बाबा उनके साथ हैं, वे बाबा के बीच में उनकी वाइफ है, युगल है, उनका नाम यशोदा था, बाबा के वहाँ पीछे वकील है, और मम्मा उस समय यंग थी, वो ही सबका सामना करती थी। तो कोर्ट में भी उसी ने सामना किया, कोर्ट में केस तो बाबा जीत गए, क्योंकि इसमें कोई पाप कर्म तो है नहीं, और इस समाज के कल्याण के प्रति है कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बना रहे हैं। लेकिन उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उन्होंने बाबा को राय दी कि आप सारे इतने सारे लोग हैं, अगर आपको अपना एक कोई कम्यून शुरू करना है तो आप कराची चले जाइए, क्योंकि कराची बड़ा शहर, हैदराबाद सिंध की भेंट में कराची तो बड़ा शहर है, तो जैसे बॉम्बे और पूना थोड़ा सा अंतर तो है, बॉम्बे बहुत बड़ा है, पूना उनसे भेंट में छोटा है, 3 घंटे का फासला था। तो बाबा जो 18 साल की उम्र से ज्यादा थे, वो तो उन्होंने तो अपना जीवन जो समर्पित किया था, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो बाबा के साथ कराची चले गए, बाकी सब अपने घर चले गए। तो वहाँ हैदराबाद सिंध को वाइंड अप कर दिया। अब जैसे बाबा कराची गए, तो कराची में मानो कई बिल्डिंग्स किराए पर ली, कुछ बाबा का अपना भी मकान था, और वहाँ पर करीब 385 भाई बहने उसमें समर्पित रूप से रहने लगे। 385 भाई बहने जिसमें कुमारियां ज्यादा थी, यंग 16 साल 18 साल से लेकर के 20 साल की उम्र वाली, जो आज हमारी दादियां हैं, तो उसी रूप की थी, और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं था परिवार से, तो वो सब समर्पित हो गए, क्योंकि परिवार के परिवार भी समर्पित हो गए। तो इसीलिए फिर शिव परमात्मा का आदेश मिला कि जो पिताश्री जी की प्रॉपर्टी थी, चल अचल प्रॉपर्टी, वो सब इन बहनों के नाम पर, 5 बहनों के नाम पर विल कर दिया, और बाबा बिल्कुल जैसे त्याग मुहूर्त बन गए, और मम्मा उसमें लीडर थे, ओम राधे जो उनको कहते थे, और दादी प्रकाशमणि वो उनके साथ थी, और भी ये 5 मुख्य बहनें थी जिनके नाम पर सारी प्रॉपर्टी बाबा ने विल कर दी। और फिर 14 साल तक 1937 से लेकर 1950 तक 14 साल ये कराची में रहे, बिल्कुल दुनिया की निगाहों से दूर। ये कराची का क्लिफ्टन बीच है, सागर का किनारा है कराची में, जहाँ सवेरे जाकर के एक्सरसाइज करते थे, सागर के किनारे जाकर के तपस्या करते थे, लेकिन बिल्कुल दुनिया को देखना ही नहीं, क्या संसार में हो रहा है बिल्कुल उनसे अनभिज्ञ। और उन्हीं 14 सालों में 1937 से लेकर 1950 तक 1950 तक दुनिया में परिवर्तन बहुत आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ दुनिया में उस समय, 1939 से 1945 तक, 39 to 45 सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ, जब अमेरिका ने जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर एक बॉम्ब गिराया, 2 बॉम्ब गिराए इन 2 शहरों में, और कैसे ही बिल्कुल शहर के शहर तबाह हो गए। तो मानो विज्ञान ने अपने विनाशकारी शक्ति आरंभ की थी। तो उस समय परमात्मा कहते थे कि ये जो आपने देखा ये रिहर्सल है, बड़ा रूप तो अभी आने वाला है, जैसे रिहर्सल पहले होती है ना, तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर तब समाप्त हुआ जब ये बॉम्ब जापान पर गिराया अमेरिका ने, और जापान ने सरेंडर किया, हिटलर ने सरेंडर किया, और अमेरिका जीत गया। तो युद्ध तो समाप्त हुआ, यूनाइटेड नेशंस बना उस समय की, ताकि तीसरा विश्व युद्ध न हो, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो दुनिया तो बिल्कुल बचने वाली नहीं है, सब खत्म हो जाने वाला है। तो युद्ध आगे न हो इसलिए यूएन यूएनओ तैयार हुआ, जो आज भी देश दुनिया को कुछ बचाता रहता है, परंतु धीरे धीरे परिवर्तन आता गया। और ये परंतु ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 14 साल वहीं भट्टी में रहा। उसी बीच हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा भी हो गया 1947 में, और कितना गृह युद्ध हुआ, रक्त की नदियां बही, हिंदू मुसलमान कैसे आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, बहुत कुछ जैसे गृह युद्ध का स्वरूप था। तभी भी परमात्मा ने यही कहा कि ये तो सब रिहर्सल है, आगे चल के बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए घबराओ नहीं, डरो नहीं। और यूरोप का तो नक्शा ही बदल गया बिल्कुल ही, सब देश कैसे अलग अलग वो हो गए, ये बहुत कुछ हुआ उस समय। और कैसे शिव परमात्मा ने इन बहनों की रक्षा की। और फिर 1950 में जिस समय भारत गणतंत्र बन गया और सब कुछ शांत हो गया, तो सिंध के चीफ मिनिस्टर ने उनको कहा कि अभी आप भारत जाओ, क्योंकि परमात्मा का भी आदेश मिला कि भारत ही सारे विश्व का अभी लाइट हाउस बनेगा, भारत ही सारे विश्व को शांति का संदेश देगा, भारत विश्व गुरु बनेगा जो आध्यात्मिकता का प्रकाश दुनिया में फैलाएगा, तो इसीलिए भारत में जाना है। तो चीफ मिनिस्टर ने बड़ा सहयोग दिया, उसने जहाज दिया और सब कुछ लेके जाने का आदेश दिया, यानी कुछ भी छोड़ना नहीं, नहीं तो जो सिंधी लोग भागे, सिख लोग भागे, जो भी हिंदू लोग पाकिस्तान से भारत में आए, वो तो बिल्कुल हाथ खाली, नंगे पैर, जेब खाली, सब कुछ प्रॉपर्टी छोड़ करके आए, क्योंकि बहुत कुछ डर था। तो लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पूरा सहयोग मिला और ये सारी जो बहनें वहाँ देख रही हैं, ये सब जो समर्पित रूप से थी, उनको वो अपनी तैयारी कर चुके हैं और बिस्तरा पेटी बांधा हुआ है, और ये जहाज दिया गया जिसमें 1950 में भारत में आए। ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, वहाँ इस जहाज में से उतरे और वहाँ से ट्रेन लेकर माउंट आबू आए, आबू रोड आए। अब ये ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो देखिए 14 साल के बाद दुनिया देखिए, बिल्कुल ये सब 385 बहने हैं ज्यादा जिन्होंने 14 साल तपस्या की। और ये आबू क्यों चुना, क्योंकि परमात्मा ने कहा कि एक पहाड़ पर जाना है, ये परमात्मा का आदेश था, सागर पर रहे पहले, सागर से अभी हटकर पहाड़ पर आना है और पहाड़ से पूरे विश्व को शांति का संदेश देना है।